विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम पश्चिमी एशिया के इलाके की परिस्थितियों की समीक्षा करेंगे जो टकराव का मैदान बना हुआ है। पश्चिमी एशिया के इलाके में इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम सीरिया की धरती पर नजर आ रहा है, जबकि यमन की लड़ाई भी इसी घटनाक्रम का हिस्सा है। पश्चिमी एशिया के इलाके में कई दशकों से जो हालात थे उन्हें जारी रखने के लिए उन सरकारों का अस्तित्व बाकी रहना जरूरी था जो अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के इशारे पर काम करती हैं। साम्राज्यवादी शक्तियां इस इलाके में हर उस सरकार का समर्थन करती हैं और उसका अस्तित्व बचाए रखने के लिए युद्ध तक करने के लिए तैयार हो जाती हैं जो सरकारें इन शक्तियों के इशारे पर काम करने के लिए तैयार हों। फिर वो ये नहीं देखती कि ये सरकार लोकतांत्रिक है या तानाशाही सरकार है। मगर इस बीच एक बड़ा बदलाव वर्ष 1979 में उस समय शुरू हुआ जब इस्लामी गणतंत्र ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई और इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। ये टर्निंग पॉइंट था। यहीं से हालात का रुख बदल गया और अमरीका सहित साम्राज्यवादी शक्तियों को चुनौती मिलने लगी। इस्लामी गणतंत्र ईरान अनेक राष्ट्रों के लिए आदर्श बन गया। लंबे उतार चढ़ाव के बाद आज स्थिति यह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों को ललकारने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अमरीका के हाथ से पश्चिमी एशिया का इलाका निकलता जा रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अपने अस्तित्व और अपने कार्यक्रमों से यह साबित कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की बड़ी शक्तियाँ और साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो चाहें वही व्यवहारिक रूप से हो। ये बात इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी ने तेहरान की यात्रा पर आने वाले सीरिया के वक्फ मंत्री और धर्मगुरुओं के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में कही।
ما از بین نرفتیم و رشد کردیم. این معناش چیه؟ اولین چیزی که معنای این حرف این است که اون چه که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند لزوماً شدنی نیست.
یہی استھتی عراق میں، سیریا میں، لبنان میں اور کچھ انتر کے ساتھ یمن میں ہے۔ यही नहीं, बहरीन और सऊदी अरब में भी जनता के स्तर पर देखा जाए तो यही स्थिति है। जनता ने स्पष्ट रूप से अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों को नकार दिया है। इस समय अमेरिका क्षेत्र में अपने पुराने घटकों की मदद से हालात को उसी बिंदु पर वापस ले जाना चाहता है जो 1979 से पहले थे, मगर ज़मीनी हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब धीरे धीरे अमेरिका की पकड़ से ये पूरा इलाका बाहर निकलता जा रहा है और दूसरी ओर अमेरिका के घटकों की हालत खराब होती जा रही है। यही भय अमेरिका, इसराइल और उनके घटकों की नींद हराम किए हुए है। इस समय इराक और सीरिया में आतंकी संगठन दाइश को शिकस्त हो चुकी है, मगर फिर भी अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं और बहाना यही है कि दाइश पर अंकुश लगाना है।
Any attempt to stay in Syria has nothing to do with ISIS or ISIS II or anything of this sort. U.S. troops are not there legally in the first place, unlike Iraq, where they have been invited in by the government of that country. The only resolution that comes even close to suggesting some kind of authority to go fight against ISIS made it very clear that that could only be done in compliance with international law and with national sovereignty. And that means with the authorization and invitation of the Syrian government, which the U.S. forces do not have.
इराक और सीरिया दोनों ही देशों में जनता और सरकार के स्तर पर यह मांग प्रबल रूप से मौजूद है कि अमरीकी सैनिक बाहर निकल जाएं, मगर फिर भी अमरीका अलग अलग बहानों से इन देशों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। इस समय अमरीका ने अपने घटकों की मदद से सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब स्थित पूर्वी गोता के मामले में भारी हंगामा मचा रखा है। सीरिया की सेना ने जब से राजधानी दमिश्क के निकट स्थित पूर्वी गोता नामक इलाके से आतंकवादियों को खदेड़ने का अभियान शुरू किया है, सीरिया में सक्रिय आतंकवादियों के समर्थकों में हड़कंप मच गया है और वो हर कीमत पर सीरिया में आतंकवादियों के इस आखिरी ठिकाने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी गोता का क्षेत्र वास्तव में तनाव कम करने के लिए किए गए एक समझौते के तहत सशस्त्र गुटों के कब्जे में था, लेकिन उस इलाके में वो गुट भी घुस गए जिनसे सीरिया सरकार का समझौता नहीं था, और इन गुटों ने दमिश्क पर रॉकेट बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद राजधानी दमिश्क की सुरक्षा के लिए सीरियाई सेना पूर्वी गोता में ऑपरेशन पर मजबूर हो गई। लेकिन चूंकि इस इलाके से दमिश्क पर मिसाइल बरसाना संभव है, इसलिए सीरियाई सरकार के विरोधी इस इलाके को किसी भी हालत में हाथ से जाने नहीं देना चाहते। दमिश्क में शोध केंद्र के विश्लेषक मेदाद तुर्की हसन का कहना है कि पूर्वी गोता के बारे में पश्चिम के सारे हंगामे की असल वजह सीरिया और रूस से बदला लेना है। पश्चिम रूस और सीरिया को दबाव में लेने में नाकामी के बाद व्यापक स्तर पर प्रचार करके पूर्वी गोता में नागरिकों के जनसंहार का नाटक पेश कर रहा है, ताकि विश्व जनमत को भड़काकर पूर्वी गोता में फंसे आतंकवादियों को बचाया जा सके। इस हंगामे की एक वजह यह भी है कि इसराइल द्वारा अवैध अधिकृत गोलान पहाड़ियों से आरंभ होकर यरमूक तथा जॉर्डन व सीरिया के सीमावर्ती इलाकों की स्वतंत्रता के लिए सीरियाई सेना का अभियान पूर्वी गोता का मामला शांत करने पर निर्भर है, क्योंकि सीरियाई सेना जब भी इन क्षेत्रों में ऑपरेशन का इरादा करती है पूर्वी गोता में आग भड़का दी जाती है। एक और वजह यह भी है कि पूर्वी गोता में आतंकवादियों की उपस्थिति की वजह से राजधानी दमिश्क की सुरक्षा में काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया जाता है, और अगर पूर्वी गोता पर सीरियाई सैनिकों का कब्जा हो जाता है तो राजधानी दमिश्क सुरक्षित हो जाएगी और बड़ी संख्या में सीरियाई सैनिक अन्य क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भाग लेने लायक हो जाएंगे, जो किसी भी रूप में अमेरिका और आतंकवादियों के अन्य समर्थकों को पसंद नहीं है। इस हंगामे की एक वजह यह भी है कि पूर्वी गोता में विदेशी और अरब खुफिया एजेंट और सैन्य सलाहकार मौजूद हैं, जो चरमपंथियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर इस इलाके पर सीरियाई सेना का कब्जा हो जाता है तो ये लोग पकड़े जाएंगे, जिससे बहुत से राजों से पर्दा भी उठ जाएगा और पश्चिम कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। लंदन स्थित वरिष्ठ टीकाकार मुश्ताक लाशारी का कहना है कि पश्चिमी देश अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाएंगे।
मैं समझता हूँ कि ये फायरबंदी एक साजिश है। पिछले 7 साल से सीरिया शाम की एक सॉवरन स्टेट के खिलाफ तमाम मगरबी ममालिक ने अमेरिका की क़यादत में एक यलगार की हुई है, और उस यलगार का यह नतीजा है कि 7 साल से शाम के अंदर तमाम जो दहशत गर्द हैं वो जहाँ कहीं से भी आ सकते थे, दाइश की हूँ, अलकायदा के हूँ, अल नुसरा की हूँ या जिससे भी, उनको ला के वहाँ जमा किया गया। और शाम की जो सावरन स्टेट है, जो वहाँ का एक सावरन गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ दहशत गर्दी शुरू की गई, और ये सिर्फ इसलिए की गई कि शाम जो है वो मिडल ईस्ट में तकरीबन बाकी तमाम ममालिक में वो वाहिद मुल्क था जहाँ पे एक न्यूट्रल गवर्नमेंट थी। बाकी तमाम आप देख लें कि उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट में सफाई कर दी। न्यूट्रल गवर्नमेंट एक लबनान में है किसी हद तक, जो इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है, एक सीरिया है, एक फलस्तीनियन है और एक ईरान है। आप देख लें कि पूरी मिडल ईस्ट में ये ही 4 ममालिक हैं जहां से इसराइल, जो अमेरिका का एक उस खित्ते में एजेंट है, उसके खिलाफ जद्दोजहद हो रही है। उस जद्दोजहद को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने देखा कि इन्होंने लीबिया में कर्नल कद्दाफी के साथ क्या किया, उससे पहले इजिप्ट को देखें कि वहाँ क्या हालात पैदा किए गए। इसके अलावा आप देखें कि बहरीन में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है वो नज़र नहीं आती। मैं समझता हूँ कि यह सारी एक साजिश है, और यह साजिश इसलिए है कि मिडल ईस्ट पूरे के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क न रहे जो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल स्टैंड ले सके, और मैं समझता हूँ कि यह साजिश उनकी कामयाब नहीं होगी। आपने देखा कि 7 साल की पूरी, मुझे ये बताएं कि इन दहशत गर्दों को असलाह कहाँ से मिल रहा है, कौन इनको असलाह सप्लाई कर रहा है, फंडिंग इनको कौन कर रहा है। ठीक है कि इन्होंने वहाँ पे सिविलियन, और ख़ास तौर पे इनको गोता ही नज़र आ रहा है, पूरा सीरिया इनको नज़र नहीं आ रहा, पूरा शाम इनको नज़र नहीं आता, वहाँ पे 4 लाख लोगों ही नज़र आते हैं। बहुत बुरी बात है, वहाँ बच्चे हैं इस वक्त, मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं वो यमन में भूख और प्यास से मर रहे हैं, वो नज़र नहीं आते, लेकिन ये 4 लाख पे इन्होंने इसलिए कंसंट्रेट किया हुआ है कि ये एक एक करके न्यूट्रल और सॉवरन कंट्रीज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और मकसद एक ही है और बिल्कुल क्लियर है कि कोई मुल्क ऐसा ना रहे जो इसराइल को चैलेंज कर सके।
वरिष्ठ टीकाकार लाशारी ने वही बात कही जो इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कही थी कि बड़ी शक्तियों ने जो चाहा वो नहीं हुआ। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है कि सीरिया इस समय अमेरिका और इसराइल के साम्राज्यवादी मोर्चे के विरुद्ध लड़ाई में फ्रंट लाइन पर है और उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है और हम सीरिया की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति महान और मजबूत इच्छा शक्ति के मालिक संघर्षकर्ता के रूप में उभरे हैं।
که از ایستادگی سوریه حمایت کنه. جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور محترم سوریه در چهره یک مبارز و مقاوم بزرگ ظاهر شد.
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता का कहना है कि हालात बदल चुके हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब हम और आप देखेंगे कि हम बैतुल मुकद्दस में नमाज अदा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं बल्कि करीब है।
उम्मीदवार हैं कि इंशाअल्लाह उन रोज़ी के शुमाहा दर कुद्स नमाज जमात में कोई उन रोज़ रो बेबीनी तो बेबीनी मुतअक्किदीम कि इन रोज़ खाहद आमद।
अमेरिका और उसके घटकों की चिंता भय और उनकी ईरान ईरान की रट का रहस्य से समझा जा सकता है। इन शक्तियों को साफ नज़र आ रहा है कि ईरान ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। वो सारे समीकरण तेज़ी से बदलते जा रहे हैं जिन्हें दशकों तक बड़ी मेहनत करके और बड़ा धन तथा मानव बल खर्च करके अमरीका ने इस क्षेत्र पर थोपा था।